ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, आत्मपद संतों के संगति द्वारा बहुत सुगमता से प्राप्त होता है। ज्ञानवानों की पृथक पृथक सेवा करो और उनके वाक्यों को विचार कर बुद्धि को तीक्ष्ण करो। जब बुद्धि तीक्ष्ण होगी तब अहंता रूपी विष की बेली का नाश करेगी। यह विचार करना चाहिए कि मैं कौन हूं और यह जगत क्या है। इस प्रकार संतों और शास्त्रों के वचनों का निर्णय करने से सत्य सत्य होता है और जो असत्य है वह असत्य हो जाता है। सत्य जानकर आत्मा की भावना करे और असत्य जगत को मृग तृष्णा के जल सा जानकर भावना का त्यागे, तो जिसको सुख जानकर पाने की भावना या चाहना करता था वे दुखदायी जान पड़ते हैं। जैसे अधिष्ठान के अज्ञान से मरुस्थल में जल जानकर मृग दौड़ता है तो दुख पाता है, वैसे ही ये सब विषय है। सबका अधिष्ठान आत्म तत्व है, वह शुद्ध रूप परम शांत और परमानंद स्वरूप है, जिसको पाकर फिर जीव दुखी नहीं होता। हे रामचंद्र जी, बंधन का कारण भोग की वासना है, भोगों से शांति नहीं मिलती। जब संतों की संगति होती है तब कल्याण होता है और अनात्मा में अहंभाव छूट जाता है और किसी प्रकार शांति नहीं मिलती। हे रामचंद्र जी, बालक की नाई हमारे वचन नहीं है, हमारा कहना यथार्थ है, क्योंकि हमको स्वरूप का स्पष्ट भान है। जब अहंता मिट जावे तब सुखी हो, इससे अहंता का नाश करो। जब अहंता का नाश हो तब जानिए कि चैत्य की भावना मिट गई है। हे रामचंद्र जी, जब ज्ञान रूपी सूर्य उदय होता है तब अहंता रूपी अंधकार नष्ट हो जाता है। ज्ञान तब होता है जब संतों का संग और विचार, विषयों से वैराग्य और स्वरूप का अभ्यास करे, इससे स्वरूप की प्राप्ति होती है। श्रीयोग वासिष्ठ महारामायण उत्पत्ति प्रकरण सर्ग 3। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, जितना जगत तुमको दृष्टि आता है सो सब आकाश रूप है। पृथ्वी आदि भूतों से नहीं हुआ, केवल भ्रम से आदि भौतिक भासते हैं। जैसे स्वप्न नगर आकाश रूप होता है, किसी कारण से नहीं उपजा और न किसी पृथ्वी आदि तत्वों से उपजता है, केवल आकाश रूप है और निद्रा दोष से आधि भौतिक होकर भासता है। वैसे यह जागृत जगत भी अज्ञान से आधि भौतिक आकाश भासता है। जैसे अज्ञान से स्वप्न अर्थाकार भासता है, वैसे ही जगत अज्ञान से अर्थाकार भासता है। हे रामचंद्र जी, यह संपूर्ण जगत संकल्प मात्र है और कुछ बना नहीं। जैसे मनोराज के पर्वत आकाश रूप होते हैं, वैसे ही जगत भी आकाश रूप है, वास्तव में कुछ बना नहीं। सब पुरुष के संकल्प है और मन से उपजे हैं। जैसे बीज से देश काल के संयोग से अंकुर निकलता है, वैसे ही सब दृश्य मन से उपजता है। वह मन रूपी ब्रह्मा है और ब्रह्मादिक मन रूप है। उनके संकल्प में जो संपूर्ण जगत स्थित है वह सब आकाश रूप है, आधि भौतिक कोई नहीं। हे रामचंद्र जी, आधि भौतिक जो आत्मा में भासता है सो भ्रांति मात्र है।
जैसे बालक को परछाई में वैताल भासता है, वैसे ही अज्ञानी को जो आधिभौतिक भासते हैं सो भ्रांति मात्र है, वास्तव में कुछ नहीं है। हे रामचंद्र जी, जितने भासते हैं वे सब अंतवाहक है, परंतु अज्ञानी को अंतवाहकता निवृत्त होकर आधिभौतिकता दृढ़ हो गई है। जो ज्ञानवान पुरुष है सो अंतवाहक रूप ही है। हे रामचंद्र जी, जिन पुरुषों को प्रमाद नहीं हुआ वे सदा आत्मा में स्थित और अंतवाहक रूप है और सब जगत आकाश रूप है। जैसे संकल्प पुरुष गंधर्व नगर और स्वप्नपुर होते हैं, वैसे ही यह जगत है। जैसे शिल्पी कल्पता है कि इस स्तंभ में इतनी पुतलियां हैं, सो पुतलियां उपजी नहीं, थंभा जो का त्यों है, पुतली का सद्भाव केवल शिल्पी के मन में होता है, वैसे ही सब विश्व मन में स्थित है, उसका स्वरूप कुछ नहीं बना। जैसे तरंग ही जल रूप और जल ही तरंग रूप है, वैसे ही दृश्य भी मन रूप है और मन ही दृश्य रूप है। हे रामचंद्र जी, जब तक मन का सद्भाव है तब तक दृश्य है, दृश्य का बीज मन है। जैसे कमल का सद्भाव उसके बीज में होता है और उससे कमल के जोड़ों की उत्पत्ति होती है, वैसे ही जगत का बीज मन है। सब जगत मन से उत्पन्न होता है। हे रामचंद्र जी, जब तुमको स्वप्न आता है तब तुम्हारा ही चित्त दृश्य को चेतता जाता है और तो कोई कारण नहीं होता। वैसे ही यह जगत भी जानना, यह तुम्हारे अनुभव की वार्ता कही है, क्योंकि यह तुमको नित अनुभव होता है। हे रामचंद्र जी, मन ही जगत का कारण है और कोई नहीं। जब मन उपशम होगा तब दृश्य भ्रम मिट जाएगा। जब तक मन उपशम नहीं होता तब तक दृश्य भ्रम भी निवृत्त नहीं होता, और जब तक दृश्य निवृत्त नहीं होता तब तक शुद्ध बोध नहीं होता, एवं जब तक शुद्ध बोध नहीं होता तब तक आत्मानंद भी नहीं होता। इतना कहकर वाल्मीकि जी बोले कि इस प्रकार मुनि शार्दुल वशिष्ठ जी कहकर तृष्णीम हुए हैं, और सर्व श्रोता वशिष्ठ जी के वचनों को सुन के और उनके अर्थ में स्थित हो इंद्रियों की चपलता को त्याग वृत्ति को स्थित करते भय। तरंगों के वेग स्थिर हो गए, पिंजरों में जो तोते थे सो भी सुनकर तृष्णिम हो गए, ललना जो चपल थी सो भी उस काल में अपनी चपलता को त्यागती भई, और वन के पशु पक्षी जो निकट थे सो भी सुनकर तृष्णिम हुए। निदान मध्यान्ह का समय हुआ तब राजा के बड़े भृत्यों ने कहा कि हे राजन, अब स्नान संध्या का समय हुआ है, उठकर स्नान संध्या कीजिए। तब वशिष्ठ जी बोले, हे राजन, अब जो कुछ कहना था सो हम कह चुके, कल फिर कुछ कहेंगे। राजा ने कहा, बहुत अच्छा, और उठकर अर्घ्यपाद्य नैवेद्य से वशिष्ठ जी का पूजन किया, और जो ब्रह्मर्षि थे उनकी भी यथा योग्य पूजा की। तब वशिष्ठ जी उठ खड़े हुए और परस्पर नमस्कार कर अपने अपने स्थानों को चले। आकाशचारी आकाश को, पृथ्वी पर रहने वाले महर्षि और राजर्षि पृथ्वी पर, पातालवासी पाताल को, और सूर्य भगवान दिन रात्रि की कल्पना को त्याग कर स्थित हो रहे, और मंद मंद पवन सुगंध सहित चलने लगे, मानो पवन भी कृतार्थ होने आया है। इतने में सूर्यास्त होकर और ठोर में प्रकाशने लगे। क्योंकि संत जन सब ढोर में प्रकाशते हैं। इतने में रात्रि हुई तो तारांगण प्रकट हो गए और अमृत की किरणों को धारण किए चंद्रमा उदय हुआ। उस समय अंधकार का भाव हो गया और राजा का द्वार भी चंद्रमा की किरणों से शीतल हो गया, मानो वशिष्ठ जी के वचनों को सुनकर इनकी तप्तता मिट गई। निदान सब श्रोताओं ने विचार पूर्वक रात्रि को व्यतीत किया। जब सूर्य की किरण निकली तो अंधकार नष्ट हो गया। जैसे संतों के वचनों से अज्ञानी के हृदय का तम नष्ट होता है और सब जगत की क्रिया प्रकट हो आई, तब खेचर भूचर और पाताल के वासी सब श्रोता स्नान संध्या कर अपने अपने स्थानों में आए और परस्पर नमस्कार कर पूर्व के प्रसंग को उठाकर राम जी सहित बोले, हे भगवान, ऐसे मन का रूप क्या है जिससे कि संसार रूपी दुखों की मंजरी बढ़ती है। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, इस मन का रूप कुछ देखने में नहीं आता, यह मन नाम मात्र है। वास्तव में इसका रूप कुछ नहीं है और आकाश की नाई शून्य है। हे रामचंद्र जी, मन आत्मा में कुछ नहीं उपजा। जैसे सूर्य में तेज, वायु में स्पंद, जल में तरंग, स्वर्ण में भूषण, मरीचिका में जल है और आकाश में दूसरा चंद्रमा है, वैसे ही मन भी आत्मा में कुछ वास्तव नहीं है। हे रामचंद्र जी, यह आश्चर्य है कि वास्तव में कुछ उपजा नहीं, पर आकाश की नाई सब घटों में वर्तता है और संपूर्ण जगत मन से भासता है। असत रूपी जगत जिससे भासता है उसी का नाम मन है। हे रामचंद्र जी, आत्मा शुद्ध और अद्वैत है। द्वैत रूप जगत जिससे भासता है उसका नाम मन है और संकल्प विकल्प जो फुरता है वह मन का रूप है। जहां जहां संकल्प फुरता है वहां वहां मन है। जैसे जहां जहां तरंग फुरते हैं वहां वहां जल है, वैसे ही जहां जहां संकल्प फुरता है वहां वहां मन है। मन के और भी नाम हैं, स्मृति, अविद्या, मलिनता और तम, ये सब इसी के नाम ज्ञानवान पुरुष जानते हैं। हे रामचंद्र जी, जितना जगत जाल भासता है सो सब मन से उत्पन्न हुआ है और सब दृश्य मन रूप है, क्योंकि मन का रचा हुआ है वास्तव में कुछ नहीं है। हे रामचंद्र जी, मन रूपी देह का नाम अंतवाहक शरीर है। वह संकल्प रूप सब बीजों का आदि वपु है। उस संकल्प में जो दृढ़ आभास हुआ है उससे आदि भौतिक भासने लगा है और आदि स्वरूप का प्रमाद हुआ है। हे रामचंद्र जी, यह जगत सब संकल्प रूप है और स्वरूप के प्रमाद से पिंडाकार भासता है। जैसे स्वप्न देह का आकार आकाश रूप है, उसमें पृथ्वी आदि तत्वों का अभाव होता है, परंतु अज्ञान से आदि भौतिकता भासती है सो मन ही का संसरना है, वैसे यह जगत है, मन के फुरने से भासता है। हे रामचंद्र जी, जहां मन है वह दृश्य है और जहां दृश्य है वहां मन है। जब मन नष्ट हो तब दृश्य भी नष्ट हो। शुद्ध बोध मात्र में जो दृश्य भासता है सोई मन है। जब तक दृश्य भासता है तब तक मुक्त न होगा। जब दृश्य भ्रम नष्ट होगा तब शुद्ध बोध प्राप्त होगा। हे राम जी, दृष्टा, दर्शन, दृश्य यह त्रिपुटी मन से भासती है। जैसे स्वप्न में त्रिपुटी भासती है और जब जाग उठा तब त्रिपुटी का अभाव हो जाता है और आप ही भासता है, वैसे ही आत्मसत्ता में जागे हुए को अपना आप अद्वैत ही भासता है। जब तक शुद्ध बोध नहीं प्राप्त हुआ तब तक दृश्य ब्रह्म निवृत्त नहीं होता। वह बाह्य देखता है तो भी सृष्टि ही दृष्टि आती है, अंतर देखेगा तो भी सृष्टि ही दृष्टि आती है और उसको सत्य जानकर राग द्वेष कल्पना उठती है। जब मन आत्मपद को प्राप्त होता है तब दृश्य ब्रह्म निवृत्त हो जाता है। जैसे जब वायु की स्पंदता मिटती है तब वृक्ष के पत्रों का हिलना भी मिट जाता है। इससे मन रूपी दृश्य ही बंधन का कारण है। हे रामचंद्र जी, फिर रामचंद्र जी बोले, हे भगवान, यह दृश्य रूपी विसुची का रोग है, उसकी निवृत्ति कैसे हो सो कृपा करके कहो। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, संसार रूप वेताल जिसको लगा है उसकी निवृत्ति इस प्रकार होती है कि प्रथम तो विचार करके जगत का स्वरूप जानो, उसके अनंतर जब आत्मपद में विश्रांति होगी तब तुम सर्वात्मा होंगे। हे रामचंद्र जी, दृश्य भ्रम जो तुमको भासता है उसको मैं उत्तर ग्रंथ से निवृत्त करूंगा, इसमें संदेह नहीं है। सुनिए, यह दृश्य मन से उपजा है और इसका सद्भाव मन में ही हुआ है। जैसे कमल का उपजना कमल के बीज में है, वैसे ही संसार का उपजना स्मृति से होता है। वह स्मृति अनुभव आकाश में होती है। हे रामचंद्र जी, स्मृति पदार्थ क्यों होती है? जिसका अनुभव पहले होता है। जितना कुछ जगत तुमको भासता है सो संकल्प रूप है, कोई पदार्थ सत्रूप नहीं। जो वस्तु असत्रूप है उसकी स्थिरता नहीं होती और जो वस्तु सत्रूप है उसका अभाव कदाचित नहीं होता। जितना कुछ प्रपंच भासता है सो असत्रूप है, मन के चिंतन से उत्पन्न हुआ है। जब फुरने से रहित हो तब जगत भ्रम निवृत्त होता है। हे रामचंद्र जी, पृथ्वी पर्वत आदि जगत असत्रूप न होते तो मुक्त भी कोई न होता। मुक्त तो दृश्य भ्रम से होता है। जो दृश्य भ्रम नष्ट न होता तो मुक्त भी कोई न होता। पर ब्रह्मर्षि राजर्षि देवता इत्यादि बहुत तेरे मुक्त हुए हैं। इस कारण कहता हूं कि दृश्य असत रूप मन के संकल्प में स्थित है। हे रामचंद्र जी, एक मन को स्थिर कर देखो, फिर अहम त्वम आदि जगत तुमको कुछ न भासित होगा। चित्त रूपी आदर्श में संकल्प रूपी दृश्य मलिनता है। जब मलिनता दूर होगी तब आत्मा का साक्षात्कार होगा। हे रामचंद्र जी, यह दृश्य भ्रम मिथ्या उदय हुआ है। जैसे गंधर्व नगर और स्वप्नपुर वैसे यह जगत भी है। जैसे शुद्ध आदर्श में पर्वत का प्रतिबिंब होता है, वैसे ही चित्तरूपी आदर्श में यह दृश्य प्रतिबिंबित है। मुकुर में जो पर्वत का प्रतिबिंब होता है सो आकाश रूप है, उसमें कुछ पर्वत का सद्भाव नहीं, वैसे ही आत्मा में जगत का सद्भाव नहीं। जैसे बालक को भ्रम से परछाई में पिशाच बुद्धि होती है, वैसे ही अज्ञानी को जगत भासता है। वास्तव में जगत कुछ नहीं है। हे रामचंद्र जी, न कुछ मन उपजा है और न कुछ जगत उपजा है, दोनों असत रूप है। जैसे आकाश में दूसरा चंद्रमा भासता है, वैसे ही आत्मा में जगत भासता है। जैसे आकाश अपनी शून्यता से और समुद्र जल से पूर्ण है, वैसे ही ब्रह्म सत्ता अपने आप में स्थित और पूर्ण है और उसमें जगत का अत्यंत अभाव है। इतना सुन राम जी ने पूछा, हे भगवान, यह तुम्हारे वचन ऐसे है जैसे कहिए कि बंध्या के पुत्र ने पर्वत को चूर्ण किया, शशे के श्रृंग अति सुंदर है, रेत में तेल निकलता है और पत्थर की शिला नृत्य करती व मूर्ति का मेघ गर्जन और पत्थर की पुतलियां गान करती हैं। तुम कहते हो कि दृश्य कुछ उपजा नहीं और है ही नहीं, और मुझको ये जरा मृत्यु आदि विकारों सहित प्रत्यक्ष भासते हैं, इससे मेरे मन में तुम्हारे वचनों का सद्भाव नहीं स्थित होता। कदाचित तुम्हारे निश्चय में इसी प्रकार है, तो अपना निश्चय मुझको बतलाइए। वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, हमारे वचन यथार्थ है, हमने असत कदाचित नहीं कहा। तुम विचार के देखो, यह जगत आडंबर बिना कारण ही हुआ है। जब महाप्रलय होता है तब शुद्ध चैतन्य संवित रह जाता है और उसमें कार्य कारण कोई कल्पना नहीं रहती। उसमें फिर यह जगत कारण बिना फुरता है, जैसे सुषुप्ति में स्वप्न सृष्टि फुराती है, और जैसे स्वप्न सृष्टि अकारण है, वैसे यह सृष्टि भी अकारण ही है। हे रामचंद्र जी, जिसका समवायक कारण और निमित्त कारण न हो और प्रत्यक्ष भासे, उसे जानिए कि भ्रांति मात्र रूप है। जैसे तुमको नित्य स्वप्न का अनुभव होता है और उसमें नाना प्रकार के पदार्थ कार्य कारण सहित भासते हैं पर कारण बिना है, वैसे ही यह जगत भी कारण बिना है। इससे आदि कारण बिना ही जगत उपजा है। जैसे गंधर्व नगर संकल्पपुर और आकाश में दूसरा चंद्रमा भासता है, वैसे यह जगत भासता है। कोई पदार्थ सत नहीं है। जैसे स्वप्न में राजमहल और नाना प्रकार के पदार्थ भासते हैं, सो किसी कारण से तो नहीं उपजे। केवल आकाश रूप मन के संसरने से सब भासते हैं, वैसे यह जगत चित्त के संसरने से भासता है। जैसे स्वप्न में और स्वप्न भासता है और फिर उसमें और स्वप्न भासता है, वैसे यह जगत भासता है। और वैसे ही जगत जाल मन की कल्पना से भासता है। हे रामचंद्र जी, चलना दौड़ना देना लेना बोलना सुनना रुंधना इत्यादि विषय और राग द्वेष आदि विकार सब मन के फुरने से होते हैं। आत्मा में कोई विकार नहीं। जब मन उपशम होता है तब सब कल्पनाएं निवृत्त हो जाती हैं। इसे संसार का कारण मन ही है। हरि ओम, हरि ओम, ओम सहनावतु सहनो भुनक्तु सहवीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु। मा विद्विषावहे। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।